हरे कृष्णा। आज की तारीख 23 अक्टूबर शुक्रवार, तो महाभारत की कहानी है ये। पांडवों को वनवास हुआ और एक साल इनकॉग्निटो अज्ञातवास, 12 साल वन में रहने का और एक साल भी वन में रहने का लेकिन छुपछाप रहने का, मतलब कोई पहचान नहीं पाना चाहिए। और वो एक साल में अगर पहचान पाए आप, किसने आपको पहचाना, तो वापस 12 और एक साल, ऐसा भयंकर कंडीशन था उनके ऊपर। तो जब 12 साल पूरे हो गए उनके, 13th ईयर में उनको गायब होना था। तो गायब कहाँ होने का, इतने बड़े वीर, इतने शरीर वाले, इतने शस्त्र वाले। तो उनके जो थे ना, वो धनुष बाण, गांडीव धनुष अर्जुन का, और भीम की गदा, और युधिष्ठिर का भाला, सहदेव की तलवार वगैरह थे ना, वो बहुत अद्भुत थे। वो मतलब वी कांट इमेजिन, वो केवल जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ प्रकाश निकलता था उसमें से, पावरफुल एकदम एफलजेंट। धनुष का जब भी ऐसा करते थे ना, छोड़ते थे ना, बोलते उसको बोलते हैं टणत्कार। वो जो आवाज़ होती थी वो पूरे विश्व में गूंजती थी, और हर एक धनुष की आवाज़ अलग हुआ करती थी कि अर्जुन का बच गया अभी, अब ये भीमसेन ने बजाया। शंख बजाते ना, शंख तो भी अलग आवाज़ आती थी, अर्जुन का अलग, भीम का अलग, कृष्ण का अलग, सबका अलग अलग आवाज़। लोग आवाज़ सुन के पहचान देते कि अभी वो आ रहा है या उससे धनुष को उठाया है अभी। इस तरह से इतने भव्य दिव्य थे वो, और बहुत प्रकाशमान थे वो, लाइट एफलजेंस। तो केवल खुद को छुपाना नहीं है, उसको भी छुपाना है, क्योंकि वो जहाँ मिलेगा तो मालूम पड़ेगा इसके आसपास होंगे किधर, है ना। एक कमरे में छुपाया है तो ये विंग में कहीं मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो सारे शस्त्र है ना, वो शस्त्रों को बांधा उन्होंने, रैप कर दिया पूरा, ताकि उसका प्रकाश को उन्होंने ढक दिया पूरा, और शमी नाम के वृक्ष के ऊपर उसको छुपा दिया। भाई पुराने ज़माने में पेड़ इतने बड़े हुआ करते थे कि आप उसके अंदर रह भी सकते हो, वन बेडरूम हॉल किचन इतने बड़े हुआ करते थे। साधु लोग रहते थे उसके अंदर, भजन भी करते थे। एक ऐसा पेड़ है उधर वृंदावन में जिसमें 3 ऐसे होल थे ट्रंक के बीच में, और ट्री जिंदा है। ट्री ऐसा नहीं कि ट्री सूख गया है तो फिर अंदर होल हो गया, ऐसा नहीं, ट्री भी जिंदा है, सब पत्ते आ रहे, फूल आ रहे, सब आ रहे। लेकिन 3 होल थे, 3 लेवल पे। एक लेवल पे वो साधु रहते थे, एक लेवल पे भगवान को उन्होंने रखा था वर्शिप करने के लिए, और एक लेवल पे भगवान की वस्तु रखे थे, ड्रेसेस और सब ऑर्नामेंट्स एक ही होल में रखे थे, और एक पेड़ में उनका पूरा भगवान की सेवा करते थे। उसका नाम मदन टेर, उस जगह का नाम है, वहाँ पर बरगद का एक पेड़ है। तो ऐसे उन्होंने पेड़ के अंदर उसको नीचे रखा नहीं, बहुत ऊपर ऐसा छुपा दिया उसको, और वो पूरा एक साल वो उनके सारे वेपन्स है ना वो उसके अंदर थे। अभी एक साल में दुर्योधन कांस्टेंट कोशिश कर रहा था कि ढूंढ के निकलना चाहिए, किधर भी उनका कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ ढूंढ के निकलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, वो लोग सब विराट के नगरी में गए, विराट नगरी, हाँ, जहाँ पर उत्तर और उत्तरा उसके पुत्र और पुत्री थे। उत्तर नाम का पुत्र, उत्तरा नाम की कन्या। उत्तरा ने शादी किससे किया, अभिमन्यु से शादी किया, वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसका बेटा परीक्षित, जिसने भागवत सुना सुखदेव से, ऐसा लिंक है उसका। तो वो नगरी में वो गए, और द्रौपदी ने क्या किया, विराट की जो पत्नी थी, शी बिकेम सर्वेंट ऑफ दैट पत्नी, मतलब यू नो मेड सर्वेंट, बाल बनाने के लिए, घर में कुछ हेल्प करने के लिए, मेकअप करने के लिए, मसाज करने के लिए वगैरह, पर्सनल सर्वेंट, ऐसे करके उसने नाम बदला, अपना नाम बताया सैरेंद्री। वो सैरेंद्री बन के चली गई उसके घर पर, सर्वेंट बन के रहने लगी उसके घर में। भीमसेन 12 साल से हमेशा भूखे थे, वैसे कहते थे कि भिक्षा मांगते थे वो जाके वन में, जितना भी सब लेके आते थे उसमें से आधा भाग कुंती देवी अपने पुत्र को देती थी भीम को, बाकी आधा भाग 5 लोग बांट के लेते थे। इतना होने पर भी भीम हमेशा भूखा ही रहा, तो उसने कहा कि चलो अपन किचन में जाते हैं तो भीमसेन जाके चीफ कुक बना है उस किचन के अंदर। ऑल्सो ही वॉज एक्सपर्ट इन कुकिंग ऑल्सो। आपको बताए सीक्रेट क्या है एक्सपर्ट कुकिंग का, बताओ, हु कैन बिकम एक्सपर्ट कुक। तो खाने में इंटरेस्ट है वही अच्छा कुक बन सकता है, उसको टेस्ट है फूड का, उसको जबान में टेस्ट है फूड का, वही खाना बना सकता है। उसको खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, ऐसा भी पेट भर लेता है, तो वो कभी अच्छा कुक नहीं बन सकता है। मराठी में शब्द है चोखंदड़, चोखंदड़ मुझे क्या बोलते हैं उसको, हर उन्नरी मतलब क्या बोलते हैं शौकीन, हाँ कुक का शौकीन होगा तो वो अच्छा कुक बनेगा। तो शकुन थे ही वो, तो वो अच्छे कुक भी थे, तो उन्होंने किचन संभाल लिया। फिर अर्जुन को एक सांप मिला था, वो एक बार स्वर्ग में गए थे दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए। दिव्यास्त्र होता ना डिवाइन वेपन्स, वो ऐसे धनुष बाणी होता है लेकिन आप मंत्र चैंट करोगे उसके ऊपर तो वो अग्नि अस्त्र बन जाएगा, फिर निहार अस्त्र बन जाएगा, फिर पशुपति अस्त्र बन जाएगा, ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, ऐसा वही एरो ही लेकिन वो पावरफुल, उसमें पावर आ जाएगी वो मंत्र बोलने से, उसको कहते हैं दिव्यास्त्र। रूटीन मारेंगे तो नॉर्मल धनुष बाण गदा वगैरह, लेकिन दिव्यास्त्र मतलब वो उसको अभिमंत्रित करेगा, कुछ चैंटिंग करेगा उसके ऊपर, मेडिटेट करेगा और फिर उसको इन्वोक करेगा उसके अंदर, फिर वो प्रकट हो जाएगा उसके बाण के ऊपर, फिर वो बाण जाएगा और वो ऐसा काम करेगा। तो अर्जुन को भगवान ने कहा था कि जाओ महाभारत का युद्ध आगे होगा तो आपको दिव्यास्त्र चाहिए, तो स्वर्ग में गया वो, स्वर्ग में जाके बहुत देवताओं से सीखा उसने बहुत सारा चीज़। तो बाय द वे व्हेन ही वाज इन द स्वर्ग तो क्या हुआ कि उधर एक अप्सरा थी, उसका नाम था उर्वशी। तो उर्वशी वैसे देखा जाए तो अर्जुन की ग्रैंडमा लगती है अर्थ के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से, यहाँ से जब गुजर गई वो तो फिर स्वर्ग में उर्वशी बनी वो, लेकिन है वो अर्जुन की नीचे वाली ग्रैंडमा, क्योंकि वो नीचे वाला है ना, वो नीचे से ऊपर आया ना, लेकिन तभी वो एकदम यंग लड़की थी, शी एज अ उर्वशी शी वॉज अ वेरी यंग ब्यूटिफुल गर्ल, वेरी वेरी। वो तीन है स्वर्ग में, एक रंभा, एक मेनका और एक उर्वशी, और बाकी सब उसके सबॉर्डिनेट। तो वो अर्जुन का स्वरूप रूप देखकर बहुत अट्रैक्ट हो गई, उसने अर्जुन को प्रपोज किया कि आई वॉन्ट टू एन्जॉय विथ यू। तो अर्जुन ने कहा नहीं माते, आप तो मेरे ग्रैंड मदर हैं। चलो वॉट ग्रैंड मदर, वॉट नॉन सेंस यू टॉकिंग, आई एम अ यंग वुमन, यू आर यंग मैन, यू हैव टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, वॉट इज दिस अर्थली कैलकुलेशन, क्या है आपका ये, मैं नहीं मानती इसको, मैं आपसे बहुत मोहित हो गई, आपको मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो वो माता माता करके उससे प्रणाम ही किया उसको, तो उसको बहुत गुस्सा आया एंड में कि मैंने आपको प्रपोज किया और आप रिजेक्ट कर रहे हो। तो ही वॉज लाइक फॉर्म कि मुझे नहीं करना है, मैं कुछ काम से यहाँ पर आया हूँ, मुझे वो काम करना है, यहाँ पर कुछ अलग काम नहीं करना है। तो शाप दे दिया उसने कि तुम एक साल नपुंसक बन के रहोगे। सी व्हेन अ वुमन इज यू नो एनैमर्ड बाय सेक्स डिजायर शी गेट्स क्रेजी आफ्टर दैट, शी डिडंट नो व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। तो उसने शाप दे दिया। अभी स्वर्ग की जो लोग होते हैं उनके शाप देने से शाप लगता भी है, अभी मैं शाप दूंगा तो आप कुछ नहीं होगा आपको। मराठी में कहावत है कवळ्याच्या शापाने गाय मरत नसतात, कौवा बहुत शाप देते रहते गाय को, गाय मरो गाय मरो गाय मरो, लेकिन गाय मरती नहीं है। वैसे ही यहाँ पर कोई शाप देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वर्ग के लोगों ने शाप दिया तो वरदान भी ऐसे होता है, वरदान दिया तो वो ट्रू होता है। तो फिर उसको एक साल का वो था ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिकमिंग यूनक, तो फिर वो यूनक बन गया और उत्तरा के घर में गया, रूम में गया और बोला कि मैं डांस टीचर हूँ, मैं आपको डांस सिखा सकता हूँ। तो वो बन गया बृहन्नला, बृहन्नला इज अर्जुन बट ही इज अ वुमन नाउ, और यूनक में भी नपुसक, तो डांस सिखाने में लग गया वो। नकुल गया घोड़े के इसमें तबेले में घोड़ों की देखभाल करने के लिए, और शायद सहदेव गया गाय के गौशाला में उनकी देखभाल करने के लिए। तो पांचों भाई फिट हो गए, सरेंद्र फिट हो गई, सब अच्छा काम चल रहा है, कोई किसी को पहचानता नहीं है। अच्छा धर्मराज क्या हो गया, धर्मराज राजा विराट का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कंक बोलते हैं उसको, कंक मतलब जस्ट यू नो ही इज देयर ऑलवेज टू एंटरटेन एंड टू टॉक एंड टू टेक केयर ऑफ यू, लाइक असिस्टेंट, आपके आगे पीछे हमेशा रहता है। कभी वो बोलेगा चेस खेलो तो चेस खेलेगा, कभी स्टोरी बोलो स्टोरी बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा कि ये शास्त्र से कुछ सुना हो तो सुनाएगा, ही इज ऑलवेज देयर एट योर साइड। तो वो बन गया कंक, तो हमेशा ही इज विद द किंग, एडवाइस देने में, कुछ बात करने में, स्टोरी बताने में वगैरह। हो गया सब, रूटीन चल रहा है, एक साल हो गया। बीच में क्या हो गया मन में, बीच में ऐसा हो गया कि वो विराट जो राजा था उसकी पत्नी थी, उसका एक भाई था, उसका नाम था कीचक, उसका नाम था कीचक। एंड कीचक जो था वो बहुत ही पावरफुल योद्धा था, एक्सट्रीमली पावरफुल, प्लीज सिट हियर, एक्सट्रीमली पावरफुल योद्धा था वो। उसका ऐसा ख्याति था वर्ल्ड में कि एक्सेप्ट भीमसेन और दुर्योधन, उसको कोई मार नहीं सकता पूरे वर्ल्ड में, ओनली 2% कैन किल हिम, एक दुर्योधन और एक भीमसेन। तो वो अपनी बहन को मिलने आता था, विराट की पत्नी को, तो उसकी हमेशा नज़र पड़ती थी सैरेंद्र के ऊपर, बोले इतनी सुंदर औरत दासी कैसे बनी हुई, तो शी वॉज वेरी वेरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। यज्ञ से जन्म हुआ था, उसका नाम था याज्ञ सेनी, मतलब यज्ञ से वो जन्म हुआ था उसका। जैसे अभी हम लोग कैसे यज्ञ करते हैं, स्वाहा, सडनली एक सुंदर स्त्री ऊपर आ गए तो कैसा लगेगा, अरे बाप रे ये क्या हो गया। वैसे उसका जन्म हुआ था यज्ञ में से, उसके भाई का और उसका, तो नहीं सुंदर थी वो, शी वॉज नॉट बॉर्न लाइक यू एंड मी, शी वॉज बॉर्न डिवाइन वे, बहुत ही सुंदर थी वो। एक्चुअली वो दुर्गा माँ का अवतार थी द्रौपदी, तो उसको देख के वो अट्रैक्ट हो गया, चल हो गया प्रपोजल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो शिव सर, नो नो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, आई एम ओनली सर्वेंट हियर। नहीं नहीं नहीं, आपको सर्वेंट नहीं, मेरी रानी बनना चाहिए आपको, आप दासी बन के क्यों रहती हो, मैं मेरी महल की रानी बनाऊँगा आपको। तो बहुत उसको हैरेस किया उसने, अभी क्या है ना, अभी गुस्सा किया तो फिर प्रकट हो जाएंगे ना, भांडा खुल जाएगा उनका पूरा, इसलिए वो सहन कितना किया उसने, बहुत सहन किया, लेकिन एक बार फिर अति हो गया। तो जाके उसने अपने, उसको पता है ये सब बात किसको बोलना होता है, किसको बोलना होता है, सब लोग प्रेम करते थे, लेकिन भीम का एक अलग अपना होलिया था। भीम इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन, है ना, आई लाइक हिम वेरी मच। सो तो भीम के पास गई रोते रोते, कि ऐसा ऐसा मुझे वो गार्डन में फॉलो करता है, घर पे आता है, वो सिस्टर के सामने प्रपोज करता है कि इसको दासी बना के क्यों रखा है, इसको मेरी पत्नी बनाओ। तो वो समझाती थी उसको कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर उसको हैरेस करने लगा वो, तो भीमसेन ने कहा कोई बात नहीं, बहुत गुस्सा आया उसको पहले, लेकिन उसको भी अपना छुपा कर रखना ना, कि भाई एक्सपोज नहीं करना कि मैं भीमसेन हूँ आके मार। बोले तो काम करो, उसको बोलो कि अभी मेरा माइंड चेंज हो गया है, अभी पहले मैं आपको चाहती नहीं थी, अभी मैं आपको चाहने लगी हूँ, और अभी मिलना हो तो आपको एकांत में मिलना होगा, तो आप ना किचन में आ जाओ, रात को किचन में कोई नहीं रहता है, वहाँ पर हम लोग मिलेंगे और आप दूसरे के मन की इच्छा पूरी करेंगे। तो उसने किचन में, तो बहुत खुश हो गया वो, एकदम खुश हो गया, अरे इतने दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज क्या परिवर्तन हो गया सडनली उसका। तो वो रात को किचन में थोड़ा सा शराब पी के, थोड़ा सा मेकअप करके, थोड़ा सा सौंदर्य क्या बोलते हैं उसको, सुगंधित द्रव्य लगा के, सब इत्र लगा के, सब आ गया, बहुत भी आज तो मन की इच्छा पूरी होने वाली है। तो भीमसेन जो है, वो भीमसेन जो है वो औरत की चुनरी वगैरह ओढ़ के सुंदर बन के फूलों के बिस्तर में बैठा था, मतलब एज इफ द्रौपदी सिटिंग, सज धज के पूरा घूंघट ओढ़ के, पूरा चक चक कपड़ा पहन के वगैरह, थोड़ा सा डिम लाइट अंधेरा, लेकिन मालूम पड़ता कोई स्त्री बैठी हुई है। तो और भी खुश हो गया वो फूल की खुशबू लेकर, जैसे उसने घूंघट उठाया तो भीम से प्रकट हो गए और ब्रह्मनाला को बोल के रखा था कि जब मारा मारी हो गई तो आवाज़ आएगा ना, भाई आवाज़ आएगा तो सब लोग मालूम पड़े कुछ हो रहा है इधर, कोई भयंकर युद्ध हो रहा है, तो फिर लोग आएंगे देखेंगे तो पहचानेंगे कि भीम आए करके। तो ब्रह्मनाला को बुलाया, बोला कि तुम मृदंग बजाना, और ऐसा मृदंग बजाना कि इतना आवाज़ होना चाहिए कि लगना चाहिए कि प्रैक्टिस चल रही है, उसमें डिशम डिशम आवाज़ नहीं आना चाहिए, खाली मृदंग का आवाज़ आना चाहिए। तो वो बैठ गया उधर, चालू किया उसने, और उसका भी बहुत गुस्सा आ रहा था ना, लाइक एंगर से वो बजा रहा था उसको, लाइक प्लेइंग लाइक एनीथिंग नो, एंड इन दैट म्यूजिक दे हैड फाइट, बिग फाइट, क्योंकि उसको भी तो आश्चर्य हुआ सडनली एकदम भीमसेन पैदा हो गया, उसने चैलेंज किया उसको, तो उसने हाथ से ही फाइट हो गया, कोई शस्त्र वस्त्र यूज नहीं किया। तो उस मल्ल युद्ध में भीमसेन ने उसको मार दिया, केवल हाथ से ही, कोई शस्त्र नहीं यूज किया। और नेक्स्ट डे कीचक वो जो है वो मरा हुआ मिला। अभी कीचक इतना बड़ा आदमी को ऐसा कोई वेपन कुछ नहीं, ऐसा मरा हुआ मिला, इट्स लाइक टू मच ना। सब जगह न्यूज़ फैल गई वर्ल्ड में कि कीचक का वध हो गया, कीचक का वध, या किसी ने उसको केवल हाथ से मारा। तो हस्तिनापुर न्यूज़ पहुंच गई, दुर्योधन को मालूम पड़ा कि कीचक का वध हो गया और किसी ने हाथ से वध कर दिया। तो उसको मालूम था या तो मैं या तो भीम, मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो मतलब भीम से नहीं किया होगा। तो बोला अभी भीम को पकड़ना है, क्योंकि वो उधर ही है किधर, तो भी तो कैसे पकड़ना है, क्योंकि ये धर्म को पालन करने वाले लोग हैं सब, इनके होते हुए कहीं अधर्म का कुछ हो गया तो ये लोग चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि क्षत्रिय है ना वो। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है ना, आपको लोग बोलते हैं कि क्षत्रिय को मांस खाना चाहिए, दारू पीना चाहिए, ऐसे लोग व्याख्या करते हैं आजकल। बहुत लोग बोलते हैं हम जात क्षत्रिय है ना, हमसे जात क्षत्रिय है, हमें क्या है, हमें हमारा खाया लगता है, हमसे जात है ना भी। बट क्षत्रिय का मतलब ये नहीं कि दारू पीना और मांस खाना, वो क्षत्रिय होता है, फिर उसके कास्ट में वो फॉलो करना पड़ता है। क्षत्रिय वो व्यक्ति है, प्लीज सुनो सब लोग गौर से सुनो, जो सो रहे हो जग जाओ सुनो, जिसे अन्याय सहन नहीं होता है, उसके ऊपर क्या हुआ नहीं, किसके ऊपर भी हुआ अन्याय तो सहन नहीं होता है, उसके सामने अगर अन्याय होता है तो वो चुप नहीं बैठ सकता है, वो क्षत्रिय है और वो डरता नहीं किसी को, अगर अन्याय होता है तो वो उसका अटैक करेगा, वो छोड़ेगा नहीं कि बोलेगा नहीं 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 अरे तो मेरे से पावरफुल है मैं भाग जाऊँगा यहाँ से, कल देखूंगा क्या करना, ऐसा नहीं। जब अन्याय होता है तो जान की बाजी लगा के अपने अन्याय के ऊपर वो हमला करेगा और अन्याय को मिटाने का प्रयास करेगा। तो ये जानते थे ना, ये देखो कहना दुश्मन है लेकिन जानते थे कि उनका ग्लोरी क्या है, जानते थे गौरव क्या है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करेंगे, अभी ये लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, शकुनी कर्णा दुर्योधन दुशासन सब चांडाल चौकड़ी बैठ के डिस्कस कर रही है, ऐसा तो हो गया अभी, अभी इनको पकड़ना चाहिए, 13 साल होने के पहले एक बार पकड़ेंगे तो फिर वापस 12 साल होते, 1 साल भेज देंगे उनको, अपना 13 साल की छुट्टी वापस, टेंशन नहीं कुछ। तो क्या करेंगे अभी, एक काम करेंगे, विराट के नगरी में जाकर गाय चुराएंगे, उनकी जितनी गौशाला है ना उनके हजारों लाखों गाय है ना वो सब चुरा लेंगे हम लोग। जैसे ही गाय के ऊपर कुछ होगा, धर्म के ऊपर हमला हो गया ना, धर्म धर्म का प्रतीक है गाय और बैल, और गाय बैल का धन को चुराने लगे कोई तो फिर वो क्षत्रिय लोग हमला करेंगे, और अगर कीचक का वध भीम ने किया है तो पांडव भी उधर ही होंगे तो वो लोग बाहर आएंगे, मतलब वो चुपचाप नहीं बैठेंगे कि जहाँ पर आसरा लिया है वहाँ पर की गाय चोरी हो रही है और हम लोग बैठ के बोल रहे हैं हम लोग अज्ञातवास में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता है, उनका खून तो खौल उठेगा, फिर हम लोग उनको पकड़ेंगे, युद्ध करने की जरूरत नहीं, हम लोग पकड़ेंगे बस खत्म भाई, 12 साल + 1 साल आउट, ऐसा उनका षड्यंत्र था उनका। तो हो गया, गाय चोरी चालू हो गया, खबर मिल गई कि गाय चोरी हो रही है और वो हस्तिनापुर के लोग ही आए सब, दुर्योधन उन्होंने ना सब भीष्मदेव को भी खींच लिया, भीष्मदेव को खींच लिया, द्रोण को खींच लिया, बड़े लोगों को खींच लिया, उनकी सम्मति नहीं थी उसके अंदर लेकिन वो इतने जिद्दी थे ना, मैंने आपको चलना ही है करके पूरी सेना आ गई, मतलब सारे लोग आ गए, कर्ण दुशासन 100 करोड़ कौरव भीष्मदेव सब लोग आ गए, उसमें बहुत भयंकर युद्ध हुआ, युद्ध होने के लिए वो सब लोग अटैक कर रहे थे, ऐसे अटैक कर रहे थे कि गाय को ऐसे मतलब यहाँ भाग रही है यहाँ भाग रही है, हजारों गाय भाग रही है, उनको ऐसे करके एक ही जगह से ले जाके अपने कंट्री में लेके जाने का ऐसा उनका स्ट्रैटेजी था। तो उसमें उसमें राजा की खबर मिल गई तो उन्होंने मीटिंग तुरंत लेके हमको भी अटैक करना है, तो राजपुत्र को बुलाया, राजपुत्र उसने बोला कि पिताजी आप मत जाओ, मैं हूँ ना, मैं जवान लड़का आपको किस लिए हूँ, मैं मरूंगा तो फिर आप आना। तो सब लोग मीटिंग में थे, वो कंक भी था ना, कंक मतलब कौन, युधिष्ठिर, वो भी था मीटिंग के अंदर एडवाइस करने के लिए। वो बोला कि एक काम करना, तो बृहन्नला को सारथी बना के लेके जाना, वो बहुत एक्सपर्ट सारथी है, वो आपका अच्छी तरह से ड्राइविंग करेगा ना तो आपको अच्छा गाइड करेगा अच्छी तरह से। तो जोर से हंसते ठहाका मार गया, वो डांस करने वाला क्या नपुंसक क्या मुझे करेगा, नहीं 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 मैं आपको बता रहा हूँ आप सुनो मेरी बात। तो राजा विराट बोलते हैं कि यस यस, वो जो बोल रहे हैं ना हमारे कंक बहुत बुद्धिमान है, वो उनको पता है इसलिए व्हाई नॉट टेक। तो बृहन्नला लंबे बाल और वेणी डाल के पूरा साड़ी पहन के इसे रथ में आके बैठ जाती है, और राजा ना उत्तर जो है ना प्रिंस वो रथी बनकर महारथी बनकर खड़ा हो जाता है, और फिर जाता है कि मैं, और उसकी सिस्टर क्या बोलती है उसको, उसकी सिस्टर बोलती है कि देखो जब युद्ध में जीतोगे ना तो सभी के ऊपर का वस्त्र लेके आना, क्योंकि तो हमारी वेदों में ऐसे स्टाइल है ना, कुछ भी पहनेंगे तो उस पर एक वस्त्र पहनेंगे ऐसे दुपट्टा टाइप, उत्तर ये बोलते हैं उसको, और वो हमारे मान सम्मान का एक प्रतीक होता है, वो अगर आपने छीन लिया तो मेरा अपमान हो गया, ऐसा हो गया। तो किसी का अपमान करा तो उसका वस्त्र छीन लेते हैं, तो उसका मतलब अपमान हो गया। तो युद्ध जीतोगे तो युद्ध का प्रूफ होना चाहिए ना कि इतने इतने लोगों को परास्त किया, वो सबका दुपट्टा लेके आना, कर्ण का भीष्म का द्रोण का इसका उसका, मैं मेरे घोड़ियों को पहनाऊंगी उसको। बोले यस यस बहन मैं आपकी इच्छा को पूरी करूंगा, अच्छा पूरा इज लाइक पम्प्ड अप नाइसली बाय एवरीबॉडी, सो इज रेडी टू गो। जब मैदान में पहुंचता है ना तो वो देखता है बाप रे इतने बड़े महारथी लोग लाइन में खड़े हुए हैं, तो जितना हवा भरा था ना हवा निकल गया हवा पूरा, इतना वो टेंशन में आ गया कि वो भागने लगा रथ उल्टा लेके, बोला बृहन्नला रथ घुमाओ यू टर्न। तो रथ घुमाया उसने, वो भाग रहा है। तो बीच में अर्जुन को लगा ये क्या, व्हाट इज हैपनिंग यार, नॉनसेंस। तो उसने रथ रोक लिया, तो रथ रोक लिया तो ये उतर के भागने लगा रथ से उतर के झम्मर के रन कर रहा है। तो बृहन्नला भागी उसके पीछे, उसने उसको उसा उठाया और उठा के बोला तू भाई बैठ आरती करने के लिए, मैं रथी बनता हूँ, तो तू क्या युद्ध करेगा, मतलब करेगी या करेगा जो भी कुछ, मतलब कोई बात नहीं, तू एनीवे तू भागी रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ। तो फिर वो कैसे भी समझे, काउंसलिंग किया उसको बहुत सारा समझाया उसको, फिर वो जाके सारथी बन गया। तो बोला इधर लेके जा, बोले यहाँ को लेके जाने को बोल रहे, वो तो इधर है। बोला युद्ध कैसे करेंगे शस्त्र के बिना, शस्त्र चाहिए ना, तो शस्त्र लेने को निकलेंगे, वो शस्त्र कहाँ रखे, बोला चलो ले चलो चलो, बोलता हूँ वहाँ लेके चलो, लेके जाते हैं। तो वो रथ से उतरते हैं अर्जुन ब्रह्मदला और पेड़ में चढ़ के वो पूरा इतना बड़ा जो बंडल बंडल है ना, पूरा हैवी बंडल है, नीचे उतरते हैं। और जैसे उसको खोलते हैं ना, उसका प्रकाश जैसे फैलता तो उत्तर एकदम कम्प्लीटली बिविल्डर्ड, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो ये अर्जुन का गांडीव धनुष है, ये गधा किसकी है, ये गधा, ये भीमसेन की गधा है, ऐसा करके स्टार्ट डिस्क्राइबिंग। तो बोलते वो कौन किधर है, वो लोग किधर है, बोलते आपके दरबार में जो कंक है ना, युधिष्ठिर महाराज है, ये उनका भाला है, और किचन में जो चीफ कुक है वो बल्लवाचार्य, वो भीमसेन है, ये उसकी गदा है, और ये जो है खड़ग जो है वो नकुल का है, और सब वर्णन करते हैं, और ये गांडीव धनुष अर्जुन का है। बोला अर्जुन कहाँ है करके दिखा दे, तो वो समझ जाते बाप रे अर्जुन, प्रणाम करता है उसको, और वो आवाज उनको सुनाई पड़ती है कौरवों को, बोले यस अच्छा हो गया, पकड़ लिया अर्जुन को। अभी अर्जुन आएगा तो उनको बोलेंगे युद्ध करने के पहले बोलेंगे पहले तुमको पकड़ लिया, तुम्हारा 13-1 साल होने के पहले तुमको पकड़ लिया, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग 1 साल पूरा हो जाने के बाद ये बात होती है, इनका गणित तो वहाँ पर गलत हो जाता है, दे थिंक कि स्टिल 1 ईयर इज नॉट येट कम्प्लीटेड, लेकिन 1 साल पूरा होने के बाद ही अर्जुन वो धनुष का आवाज़ करते हैं और फिर आते हैं। ऐसे कहते हैं कि अर्जुन जब आए ना ब्रह्मदला के रूप में, साड़ी पहन के वो क्षत्रिय बन के आ रहे थे, तो ऐसे कई सूर्यों का प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा था तेज, और उन्हें अकेले ने उत्तर को सारथी लेकर सारथी बनाकर बहुत भयंकर युद्ध किया, हरेक को परास्त कर दिया, फिर भी ऐसे इससे युद्ध किया तो ये परास्त हो गया, हट गया, दूसरा आ गया, उसको परास्त किया, तीसरा आ गया, ऐसा करके सीरीज अब युद्ध चल रहा था। बाद में सब लोग एक साथ टूट पड़े अर्जुन के ऊपर, तो अर्जुन ने फिर सम्मोहनास्त्र, ब्रह्मास्त्र नहीं, सम्मोहनास्त्र मतलब हिप्नोटिज्म, सब लोग एकदम वो अस्त्र छोड़ते सब लोग बेहोश हो गए, सब रथ पे गिर गए, सब गायों को उन्होंने वापस घुमाया और अपने गौशाला में लेके गए। और फिर वो उत्तर को ना बहुत टेंशन आ रहा था, मतलब ही इतने बड़े महारथी उनको 1-to-1 फेस करना है ना, बड़ा जोक, उनकी आंखों के सामने अर्जुन ने उनको परास्त कर दिया, तो उनको बोलते हैं मुझे देखना है सबको पास में से, अभी आप बोलेंगे ना कि मुझे रजेश खन्ना को देखना है, तो बोला देखता हूँ पास में से, हाउ ही लुक्स, अमिताभ बच्चन कैसे दिखता है। सो वैसे उसको इच्छा थी कि मैं कर्ण को और भी भीष्मदेव को सबको पास में से देखूँ, पहले हिम्मत नहीं हो रही थी पास में, अभी तो बेहोश हो गया तो पास में गया, तो उसको याद आया, अर्जुन ने उसको याद दिलाया, याद है ना बहन ने कहा था दुपट्टा ले लो, तो वो बहुत डर डर के उसने निकाल, अब लेके जग ना जाए बीच में सबके वस्त्र निकालता है इकट्ठा करके, बोला चलो अभी वापस जाते हैं। तो अभी अभी तुम बोलते हैं अभी मैं वापस सारथी तुम रथी, सी कितना अभी देखो इतना बड़ा पराक्रम किया, फिर भी वो बोलते नहीं कि अभी सबको जाके बोलना है मैंने सब किया तुमने नहीं किया, बोला कि सब कुछ मैंने किया ऐसा बोलना सबको, मतलब उत्तर को बोलते हैं कि तुम खुद किया ऐसे बोलना और मैंने सारथ्य किया इतना बोलना बस। तो आता है विजय होकर, खबर पहुंचती है कि सब लोग बेहोश हो गए और सब भाग गए, उसके बाद में गाय धन वापस आ गया, सब लोग उत्तर की जय हो, उत्तर की जय जयकार हो, उत्तर की जय जयकार होकर स्वागत करते हैं फूलों से वो सब कुछ। तो फिर आते हैं, फिर मालूम है ना, अभी कोई विजय होकर आता है तो घर में बैठे डिस्कस करते हैं कैसा किया वैसा किया वैसा किया, अभी वो कितना देर फेंकेगा अभी कितना झूठ बोलेगा वो कि मैंने ऐसा शस्त्र किया, फिर मैंने उन्हें ऐसा किया, फिर मैंने उनको ऐसा किया काट दिया, फिर ऐसा किया। तो बीच में वो है ना कंक है ना, कंक ऐसा समझो आप ऐसे बैठे हुए सब लोग, हाँ तो उसमें विराट राजा भी है, विराट राजा की पत्नी भी है, सरेंद्र भी है, कंक भी है, सब लोग बैठे हुए हैं। तो बीच बीच में कंक बोल रहा था कि जो भी कुछ हुआ ना वो ब्रह्मदला की वजह से हुआ, ब्रह्मदला ने बहुत बढ़िया काम किया, ब्रह्मदला की वजह से ये विजय प्राप्त हुआ, ऐसे उसने कई बार बीच में बोला। तो विराट को अच्छा नहीं लगा, व्हाट नॉनसेंस, एक नपुंसक की बार बार ग्लोरीफाई किया जा रहा है, मेरा पुत्र क्षत्रिय है उसको छोड़ के बार बार कंक उसका नाम ले रहा है। तो बीच में सडनली उसको बहुत गुस्सा आया, वो लोग चेस खेलते खेलते बैठ के सब चल रहा था उनका, तो उसने चेस का सोंगटी उठाया और दे लेकर मारा उसको युधिष्ठिर को, इधर मुंह पे मारा, नाक पे लगते ही नाक से धड़ाधड़ खून बहने लगा। तो द्रौपदी एकदम भाग के गई और पॉट लगाया उसने, क्योंकि अर्जुन ने एक बार घोषणा की थी, प्रतिज्ञा की थी, कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे बड़े भाई का खून जमीन पे गिराएगा ना, मैं उसका वध कर दूंगी, वध कर दूंगा। अब ये मारा तो विराट ने है, एक साल आसरा दिया है, अज्ञातवास को सफल किया है। अगर अर्जुन को मालूम पड़ा कि इसने उसका खून जमीन पे गिराया है, तो वो विराट को मार डालेगा, वो रुकेगा नहीं, फिर वो भी बदरी बैठा हुआ है, इसलिए उसने जाके जमीन पे गिरने नहीं दिया उसको। कितना देखो, कितना मैच्योरिटी है उनके अंदर, सोचो आप। एक तरफ से पति का अपमान हो रहा है, एक तरफ से उसका खून बहा जा रहा है, एक तरफ से ऋण है उनका कि उन्होंने एक साल से हमको आसरा दिया है, इतना हेल्प किया है, तो वी शुड नॉट यू नो गो इन टू किलिंग देम। तो फिर उसके बाद में सब लोगों ने रिवील किया कि मैं अर्जुन हूँ, मैं भीमसेन हूँ, सब लोगों ने बताया एक साल होना होने के बाद में। तो सब लोग चरणों में गिरे उनके, अरे भाई आप हमारे वंदनीय हो कुरुवंशी, आप हमारे पास कुक बने, हमारे पास गायों की रक्षा करने के लिए, घोड़ों की रक्षा करने के लिए, और नपुंसक बने, डांस सिखाया, क्या क्या किया आप लोग ने, प्लीज़ फॉरगिव। मैंने तो, वो तो हैरान हो गई विराट की पत्नी, मैं द्रौपदी तो मेरी दासी बनकर एक साल सेवा किया मेरी। तो वो जो दिन था, जिस दिन अर्जुन ने उस पेड़ से वो निकाला, वो दिन दशहरे का दिन था। वो पेड़ इतना महान बना क्योंकि उस पेड़ ने वो शस्त्रों को एक साल आसरा दिया छुपा के रखने में, पांडवों की सेवा किया उसने, इसलिए उस पेड़ को भी सोने का पेड़ मानते हैं, उस पेड़ का गौरव करते हैं, ग्लोरीफाई द ट्री। और उस दिन उस पेड़ के पत्तों को गोल्ड समझ के लोगों को बांटते हैं, सोने बांटने, ऐसा कारण ते है। आपट्याचं वृक्ष म्हणजे तसं नाव शमी वृक्ष, लोकल नाव आपट्याचं वृक्ष, ऐसे पत्ते होते उसके, ट्विन लीव्स, और सब लोगों को देकर उसको बांटते हैं। और हमारा कल्चर ऐसा है, ट्रेडिशन ऐसा है कि वो छोटे लोग बड़े लोगों के पास लेके जाते हैं उसको, और उनको देते हैं, उनको चरण छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, इक्वल्स के साथ में वो देते हैं और गले मिलते हैं और छोटों को आशीर्वाद देते हैं। तो ये हमारा रिवाज है, कल्चर। इसलिए हमारी कल एक मीटिंग थी ऑडिटोरियम में, उसमें भी हमने, मैं लेके आया था उसको, मैंने उसका थोड़ा संक्षेप में कहानी बताया और सब लोग ने फिर एक्सचेंज किया उसको और गले मिले सब लोग, एवरीबडी मेट इच अदर। तो ये उसकी कहानी है, आपट्याचं वृक्षाची कहानी। और अभी अभी मैंने सुना कि वो जो लीफ है, लीफ उसके अंदर बायोलॉजिकली देखा जाए तो, बॉटनिकली देखा जाए तो उसमें गोल्ड का कुछ अंश भी है, ऐसा अभी जाहिर हो रहा है, हिस्टोरिकल फैक्ट। तो ऐसा हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर में हर एक चीज़ का मीनिंग है, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग सारा मीनिंग भूल चुके हैं। भाई नवरात्रि इतना बड़ा उत्सव है, इतना बड़ा, उसके अंदर सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। नवरात्रि मतलब क्या, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने का, स्टेज बनाने का, रात को ताश खेलने का, दारू पीने का, मटन खाने का, फर्स्ट क्लास पब्लिक के पैसे से एंजॉय करने का, एंड में नाचने का, नशा करके पूरा नाच करने का, देवी को भी शर्म आना चाहिए देख के आपको इतना नाचने का। फिर हो गया, फिर हो गया दूसरा गणपति, फिर गणपति में पैसा इकट्ठा करने का, स्टेज बनाने का, अपने पसंद के गाना सुनने का, डिस्को वाला डांस करने का लड़कियों के साथ में, दारू पीने का, रात को ताश खेलने का, फिर वापस पब्लिक पैसा लेके एंजॉय करने का। ये नवरात्रि का और गणपति का स्थिति आ गया आजकल। लेकिन नवरात्रि क्यों करते हैं? नौ दिन दुर्गा देवी के नौ रूपों की पूजा करते हैं, हर एक एक रूप का हर एक स्पेशलिटी है, अलग अलग नाम है उनके, और अलग अलग बेनिफिट्स हैं उनकी प्रार्थना करने के, अलग अलग संकटों से मुक्त करती है वो। और नवे दिन की पूजा, नवे दिन में आई थिंक अष्टमी के दिन पे कन्या को, कन्या जो है ना उसको बहुत सारी पूजा करते हैं, उसके उसको वस्तु देते हैं बहुत सारी, कंगन, कुमकुम, ड्रेस, कंगी, आईना, बिंदी और बहुत सारा अलंकार, वस्त्र सब देते हैं। मेरी वाइफ ने भी दिया, तो बहुत सारा सिग्निफिकेंस क्या उसका, कन्याकुमारी के रूप में एक अच्छा मैसेज आया था बीच में कि जब बेबी गर्ल जब गर्भ में आती है तो लोग उसको मार देते हैं, और नवरात्रि के आठवें दिन कन्या ढूंढते हैं, कौन कन्या की तरह अवेलेबल है, क्या किसके घर में है, क्या कोई है, क्या आपके घर छोटी कोई लड़की है, क्या आपके घर लड़की है, ऐसा हमारा संस्कृति हो गया आजकल, इतना लोग गिर गए। लेकिन ये सब बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज ये नवरात्रि का आपने पूछा, तो नवरात्रि का मीनिंग ये है कि नवरात्रि की देवी जो है वो कौन है देवी? वो जैसे कि यहाँ पर एक देवी खड़ी है राधा रानी, वो कौन है? वो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, अंतरंग शक्ति है, वो भगवान की प्रेम की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, सेवा की शक्ति है, वो इंटरनल पोटेंसी, अंतरंगा शक्ति बोलते हैं उसको। वो सब आपके अंदर जितना भी डिवोशन है, आप समझते हैं जितना आपके अंदर है, वो सब उसकी ओर से आता है। वॉट एवर टूडे यू हैव डिवोशनल आइटम इन यू, सर्विस सेवा भाव जितना आपके अंदर है, वो सब राधा रानी की ओर से आता है। लेकिन जब तक आप सेवा भाव में हैं, डिवोशन में हैं, तब तक सब उनके पास से आता है। जब आपका भाव चेंज हो जाता है, अभी डिवोशन कुछ करना नहीं मुझे, अभी मेरे को एंजॉय करना है, तो फिर वही राधा रानी जो है ना, वो दुर्गा रूप, दुर्गा के रूप में रूपांतर हो जाता है उसका। जैसे जब तक आपको माँ प्रेम कर रही है, अपना आप अच्छे बर्ताव करते हो, मिसबिहेव नहीं करते हो, कुछ चोरी नहीं करते हो, तब मम्मी आपको लड्डू देती है, डब्बा भर के देती है, प्रेम करती है आपसे। जैसे आप किसी फ्रेंड का पेंसिल चुरा के लेके आए, तो क्या करती है? डड्डा उठाती है फिर तुरंत। तो चेंज कौन हो गया? मम्मी हुई कि कौन? बच्चा हुआ चेंज। बच्चा चेंज हुआ इसलिए मम्मी चेंज हो गई। मम्मी तो वैसे ही है प्रेमल, लेकिन बच्चे ने चोरी किया इसलिए मम्मी फिर दंड के मूड में आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में आ गई। वो प्रेम के मोड में से एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट के मोड में आ गई वो। तो जब हम सब लोग भगवान को भूलकर ये दुनिया का भोग लेना चाहते हैं, रावण जैसा, रावण ने क्या किया? भगवान की प्रॉपर्टी भगवान को बाजू में रख के उसको एंजॉय करना है, समझ आया ना? राम को छोड़कर सीता को एंजॉय करना है उसको। तो ऐसे लोगों को ये राधा रानी दुर्गा बनकर पकड़ लेती है। निकटस्थ माया धरे झपट या धोरे, झपट के पकड़ लेती है वो और बांध के बंद कर देती है। तीन प्रकार के कष्ट में बांध देती है, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश, दूसरों के द्वारा मिले हुए क्लेश, प्रकृति के द्वारा हुआ तकलीफ, खुद के द्वारा भी होती है ना तकलीफ कि नहीं होती है? एक एग्जाम्पल बताओ, खुद के द्वारा तकलीफ खुद को कैसी होती है बताओ? यस नारद मुनि जी बताओ। उनका दीक्षित नाम नारद मुनि दास है। आपको पूछेंगे तो आपको उत्तर कैसे आएगा मेरे पीछे बिना? बताओ एक एग्जाम्पल बताओ कि आप अपने आप को कष्ट कैसे देते हो बताओ? स्ट्रेस, उन्होंने कहा वो भी ठीक है, कुछ अच्छा स्ट्रांग एग्जाम्पल बताओ। अरे दारू पीते लोग ना कि नहीं पीते हैं? खुद दारू पी के खुद का नुकसान करते कि नहीं? सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा पीते हैं, क्या नशा करते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, और एम्बिशन रखते हैं बहुत बड़ी जो मुमकिन नहीं है। मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है मम्मी, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, कुछ भी हो लाइफ में मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है 300 कोटी का। ऐसा महत्वाकांक्षा रखेंगे तो ज़िंदगी बर्बाद करेंगे कि नहीं करेंगे? तुम्हारे बस में जो नहीं है उसकी करता मैं ना, बोलेंगे मिस यूनिवर्स जो है मेरी पत्नी होनी चाहिए, ऐसा इच्छा करेंगे तो नुकसान होगा ना आपका, दुख होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मर्डर करेंगे, किसी क्या क्या करके रहेंगे, पागल जैसे बिहेव करेंगे। तो वो खुद को दिया हुआ खुद का तकलीफ है। तो ये तीन तकलीफ जो है उसमें वो दुर्गा देवी आप लोगों को बांध के रखती है, और कोई फ्री नहीं उससे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, अमेरिका का अध्यक्ष हो, वो फ्री नहीं है उसमें से। जब भूकंप होगा तो उसको कष्ट होगा, जब तूफान आएगा तो उसको भी कष्ट होगा, जब हीट बढ़ेगा तो उसको भी कष्ट होगा, जब तो आंधी आएगी तो उसको भी कष्ट होगा। ही इज़ नॉट फ्री, वो भी बुढ़ा होगा, वो भी बीमार पड़ेगा, उसको भी कैटरेक्ट होगा, एक दिन वो मर जाएगा। ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट ही विल डाई वन डे, कोई फ्री नहीं है। जब तक जीव भगवान की सेवा में नहीं आता है तब तक वो उसको त्रिशूल से मारती रहती है, त्रिशूल उसके गले में लटका के रखती है, घुसा के रखती है। और जिस दिन आप तय करते हो कि आज से बंद, भगवान का भक्त बनूंगा मैं, आज से भगवान के शरण जाऊंगा, उनके बिना उनकी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का प्रयास नहीं करूंगा रावण की तरह, तो त्रिशूल निकाल देती है, रिलीज़ कर देती है उसको। और रिलीज़ करने के बाद में गाइड भी करती है, ट्रेन भी करती है, रेडी भी करती है उसको, और भगवान के पास लेके जाती है। वो दुर्गा देवी, उसकी पूजा 9 दिन होती है। ये सारे जो अपनी जो ये सब क्या है एक्चुअली, रावण का बेसिक प्रॉब्लम क्या है? मेंटल प्रॉब्लम। मेंटल क्या प्रॉब्लम है? जो मेरा नहीं है वो मुझे मिलना चाहिए, किसी का भी हो मेरे लिए है वो, दुनिया में जो भी अच्छी चीज़ है वो सब मेरे लिए है, ये मूड था उसका। सबसे बड़ा रोग है ना वो उस मूड का रोग है. बाकी ऐसा नहीं कि आपकी बीवी नहीं, आपको यू कैन एंजॉय, मैरी वन वूमन एंड एंजॉय. प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे की बीवी को देखने लगता है तो प्रॉब्लम शुरू होता है. अपने पैसे को छोड़कर दूसरे के पैसे को देखने लगता है तो प्रॉब्लम है. अपना पोजीशन को छोड़कर तुम्हारी पोजीशन क्या है देखने लगता है तो प्रॉब्लम शुरू होता है ना. अपनी गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी देखने लगेगा कि ये गाड़ी मुझे चाहिए, ये मेरे से बड़ी, भला मेरी गाड़ी से अच्छी गाड़ी उसके पास कैसी. तकलीफ शुरू होती. जब तक आपके दायरे में आप हो तब कोई तकलीफ नहीं है. जब दायरे के बाहर की चीज़ आपको चाहिए तभी आपको तकलीफ शुरू होती लाइफ में. वो मेन रावण का रोग वो है. रावण के पास कोई कमी नहीं थी. रावण का मंदोरी जैसे सुंदर बीवी थी उसके पास, बहुत सुंदर. आज भी इतिहास में मंदोदरी का नाम प्रसिद्ध है दो चीज़ के लिए, एक सौंदर्य के लिए और दूसरा पतिव्रता धर्म के लिए. आज भी हमारे शादी के मंत्रों में रावण मंदोदरयो ऐसे करके हम पुकारते हैं. ग्रंथि बंधन और सिंदूर दान की विधि में उनका नाम लेते हैं, रावण मंदोदरी. इतनी पतिव्रता थी वो, जैसे द्रौपदी है पतिव्रता, जैसे अनसुईया है वैसे उसका नाम आता है मंदोदरी का. इतनी सुंदर पत्नी थी उसकी और हजारों लेडीज थे उसके पत्नी के रूप में. वे जहाँ जहाँ वो गया रावण, जिधर जिधर जिस दो लड़की उसको अच्छा लगी उसने उसको बोला या तो शादी कर या तो मैं ज़बरदस्ती आपसे संबंध करूँगा. तभी वो इतना बड़ा वीर था, बहुतों ने तो दिल से हाँ कर दिया क्योंकि इतना बड़ा वीर जो इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल, इतना ब्यूटीफुल, वॉज वेरी हैंडसम. ये जो 10 हेड का जो कंसेप्ट है ना वो एक्चुअल 10 हेड का नहीं था, वो ऐसे सिम्बॉलिक, वो एक लक्षणिक प्रेजेंटेशन है कि वो ऐसा भयंकर आदमी था. सिंह दिखाते उसको, वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो डीमन है करके. इसलिए वो सब कंसेप्ट है उसके अंदर. उतनी शक्तियाँ थी, ब्राह्मण कुल का था वो, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति का था वो. राक्षसी प्रवृत्ति मतलब ये नहीं कि उसको सिंह होने चाहिए, दांत ऐसे बाहर आने चाहिए और काले रंग का होना चाहिए और लाल बाल होने चाहिए उसके और वो बहुत 50 फीट ऊंचा होना चाहिए तभी उसको राक्षस बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है. राक्षस का मतलब जो दूसरे की प्रॉपर्टी को छीनना चाहता है और भगवान का दुश्मन है उसको राक्षस बोलते हैं. हु इज अ डीमन? डीमन इज डिफाइंड एज इज एनिमी ऑफ द लॉर्ड एंड ही वॉन्ट्स टू यूसर्प द प्रॉपर्टी ऑफ एवरीबडी एल्स फॉर हिमसेल्फ, दैट इज डीमन. तो वैसा डीमन हमारे सबके अंदर छुपा हुआ है. हमारी नज़र हमेशा जो अपने पास है उस पर नहीं रहती, दूसरे के पास क्या है उसकी नज़र रहती है हमारी. और वो जो आपके पास है वो जब मेरा हो जाता है तो नज़र फिर वहाँ से भी हटती है और तीसरी चीज़ पर जाती है. जब तक वो मेरे पास नहीं तब तक मैं उसके पीछे रहूँगा, जब मेरी हो गई तो बाजू में रखता हूँ, फिर और मेरे पास क्या नहीं है उसके पीछे भागने लगता है. ये हमारा सबका रोग है. इसलिए कहते हैं कि रावण त्रेतायुग में राम के हाथ से मर गया लेकिन वो हमारे हृदय में अभी भी जिंदा है. और जब तक वो जिंदा है तब तक ये माता जी दुर्गा देवी बनकर खड़ी है पकड़ के, आपको छोड़ेगी नहीं आपको. हम चाहे बिलीव करे नहीं बिलीव करे, हमको लगा मैं तो फ्री हूँ, किधर मेरे को कुछ नहीं पकड़ा है, लेकिन टाइम आपके ऊपर असर कर रहा है. धीरे धीरे आप बूढ़े हो रहे हो, बाल सफ़ेद हो रहे हैं आपके, शरीर बीमार हो रहा है ना, बीमार रोग रोग भी आपको आ रहा है, फिर बूढ़े भी हो रहे हो और मालूम पड़ रहा है कि मृत्यु पास में आ रही है. सब बंदे हुए ना हम लोग, हमको चाहते तो है कि सब लोग 16 साल की उम्र में ही रहे. सबकी यही तमन्ना होती है कि मैं 16 साल में जितना तैसा था. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सबको ये तमन्ना होती है कि 16 साल का ही रहूँ, बेस्ट एनर्जी, बेस्ट ब्यूटी, बेस्ट स्ट्रेंथ, सब कुछ बेस्ट. लेकिन नहीं रह सकते आप लोग, हमारे में से कोई रह सकता नहीं. इस तरह से हम लोग बंधे हुए हैं. मतलब एंजॉय करेंगे हाँ, लेकिन 40 डिग्री में क्या एंजॉय करेंगे आप? कैसे करेंगे? रशिया जाएंगे -45 डिग्रीज, क्या एंजॉय करेंगे? मतलब यू विल बी फ्रोजन टू डेथ. आपका सब क्या होगा, वो यू सब काला पड़ जाएगा, उंगली सब पूरी फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा आपको पूरा. तो कहीं जाएंगे घूमने के लिए तो भूकंप हो जाएगा बीच में, या और कुछ तूफान आंधी आ जाएगा, ट्रेन बंद पड़ जाएगी, सारे आपके प्लान्स फेल हो जाएंगे. होता है कि नहीं? बहुत सारे. इतना पैकिंग करके जाते हैं हॉलीडे मनाने के लिए, उधर दंगा हो जाता है, नाकाबंदी हो जाती है, आपका होटल वोटल सब बंद, किधर पिकनिक वाले मनाते हैं? इतना बढ़िया काश्मीर बना के रखा है, हु कैन गो देयर नाउ? नोबडी कैन गो बिकॉज गोली चलेगी आपके ऊपर, बॉम्ब गिरेगा, हु नोज, ऐसा है। को लगता है हम लोग एंजॉय करेंगे, एंजॉय नहीं कर सकते। एक ही चीज़ में एंजॉय कर सकते हैं हम लोग, तो भगवान की सेवा करेंगे तो एंजॉय कर सकते, तो रियल एंजॉयमेंट मिलेगा आपको, रियल एंजॉयमेंट जो आत्मा को संतुष्टि देगा, शांत करेगा। तो देवी से हम लोग ये नहीं बोलते देवी अच्छा पति दे दो, शादी नहीं हो रही है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसको अच्छा लड़का दे दो, मेरे लड़के को लड़की अच्छी दे दो, हाँ मेरे लड़के का अब्रॉड में एडमिशन हो जाए, हाँ सिसिली मैडम मेरा लड़के का एडमिशन हो जाए, शादी हो जाए उसकी, उसका एक फ्लैट का लोन हो जाए सैंक्शन तो अच्छा रहेगा, उसको एक टू व्हीलर चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसे बड़ी लिस्ट लेके जाते देवी के पास। तो देवी बोलते अरे क्या, अभी लास्ट ईयर भी एक लिस्ट थी, अभी एक बार नई लिस्ट लेके आए है ना। वो खाली देवी के पास नहीं, वो मस्जिद में, चर्च में, गणपति के पास, सब जगह पे अपना लिस्ट लेके जाते सब लोग जहाँ चाहे वहाँ पर सबमिट करते रहते, जहाँ लग गया नंबर लग गया, क्या पता नहीं कौन सी देवी और कौन सा भगवान प्रसन्न हो गया मेरे ऊपर तो मेरी लिस्ट पूरी हो जाएगी। लेकिन देवी और चर्च वाले और मस्जिद वाले और मंदिर वाले सब देख रहे हैं कि साल भर आते रहते ही अपना लिस्ट पूरा ही नहीं होता है उसका, नया नया लिस्ट लेके हर बार आते रहते हैं, कोई मुझ पर प्रेम नहीं करता है ये मालूम पड़ता है देवी लोगों को। ये प्रेम खाली खुद पर करता है, दिखाता है मैं तुम्हारे पर प्रेम कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन लिस्ट पूरी करने के लिए आता है खाली उधर। लेकिन देवी बहुत दयालु होती है, इतना होने पर भी वो आपकी लिस्ट पूरी करने का प्रयास करती रहती है। लेकिन जब आप बोलेंगे कि देवी अभी मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, बताओ कैसे सेवा करूँ, मेरे लिए अच्छा क्या है बताओ, मेरा कल्याण किस में बताओ, हाउ इट इज, किधर मेरा वेलफेयर छुपा हुआ है बताओ, तब देवी आपको वो जो रियली दे सकती है वो देने लगती है। उसके पास देने के लिए जो वस्तु है, जो उसके पास दे सकती है, वो देना आरंभ तब करती है जब आप उसको चाहना आरंभ करते हो, तब तक नहीं करेंगे। आपको चाहिए नहीं तो मैं क्यों दूंगा उसको। राजा के पास जाएगा, बोलेगा अरे भूख लग रही है, दो रोटी खिलाओ, रोटी देगा आपको वो, क्या मन में हंसेगा, वो हंसेगा कि नहीं, क्या बोलेगा, अरे तेरी जिंदगी भर का रोटी का इंतजाम मैं कर सकता हूँ, तू खाली दो रोटी मांग रहे हैं मुझसे, लेकिन दो ही रोटी मांग रहे हो, क्या करेगा वो। लेकिन राजा को बोलेगा कि आज आपका बर्थडे है, आपने सबको दान देने का अनाउंसमेंट किया है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, नहीं मैया आपको तो मांगना चाहिए, मेरा बर्थडे आज, राजा बोल रहे हैं। तो मैया क्या बोलती है, राजा तुम मेरा बेटा बन जाओ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरे मेरा बेटा बन जाओ। अरे उसका बेटा होने से वो व्यक्ति का सारा चीज़ जो ज़रूरत है सब पूरे हो जाते हैं, अलग से मांगने की जरूरत नहीं, मेरे को रोटी भी चाहिए और कपड़ा भी चाहिए और घर भी चाहिए और रास्ता भी चाहिए और फल भी चाहिए और फूल भी चाहिए, कुछ नहीं। एक बार राजा की माँ बन गई तो फिर क्या है, राजा ने बोला तथास्तु, आज से मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरी माँ, सब कुछ, एवरीथिंग इज सेकंड केयर। तो वैसे हमको भगवान का बेटा बनना चाहिए, भगवान का बेटा बनते ही आपको अलग अलग, वो बच्चा बोलता है कभी आपको, मम्मी मैं अभी 6 महीने का हो गया हूँ, मेरा नैपी अभी छोटा हो रहा है, साइज बढ़ा दो अभी, हाँ ये पुराने कपड़े हो गए, अभी कितना दिन से मुझे पहना होगी, मतलब बड़ा हो गया अभी, फट भी रहा है वो। या स्कूल में कभी बोलते हैं कि आप मम्मी हमें फीस भरनी है, नया बैग लाना है, वाटर बॉटल नहीं लानी है, अरे उसके पहले ही आ जाता है वो, हाँ अपने आप आ जाता है, फिर अपने आप टाइम पे भरी जाती है, सब कुछ होता है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली डन, क्योंकि वो शरण है मम्मी के अंदर, मम्मी के लिए बच्चा शरण में है, वो जो शरण में है उसकी पूरी देखभाल की जाती है। जो अपना बॉस बनने की कोशिश कर रहा है, जा भाई तू जा अपना अपना इंतजाम कर, अभी फिर तकलीफ होती है उसको, ठोकरे खाता है वो। लेकिन जो शरण होता है उसकी सारी देखभाल भगवान करते हैं। हमारा बुद्धिमानी क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, कि आप अपने अपने ऊपर चलने का प्रयास मत करो, उनका सहारा लो। मैंने एक आपको कहानी बताई होगी पहले, अभी दोबारा बताता हूँ 2 मिनट के अंदर। अभी कल का दिन था ना दशहरे का दिन, दशहरे का दिन में हमारे तभी का चैतन्य पॉलीक्लिनिक, आज का भक्ति वेदांत पॉलीक्लिनिक, उसका उद्घाटन हुआ था 93 में, तो 22 साल पूरे हो गए कल के दिन, 25 साल के दिन उसका एक बड़ा उत्सव मनाएंगे, हाँ भक्ति वेदांत पॉलीक्लिनिक सिल्वर जुबली 2 साल के बाद में, 2017 में होगा वो, 2018 में होगा सॉरी, तो 93 में उसका उद्घाटन हुआ था। तो हमने जब पहला फ्लैट लिया था ना उधर, एक ओपीडी शुरू किया था फ्लैट लेके, तो वो जो घर जिसका था वो ब्रोकर भी था और वो घर का मालिक भी था, तो हम लोग उसके बाद बैठ के नेगोशिएट करके फ्लैट ले लिया हमने। तो फाइनल जब पेमेंट करने गए तो हम लोग गए थे, तभी उसका घर में पपी था, एक पपी, हाँ सुन रहे सब लोग संजना, एक पपी था। तो वो पपी जो है ना, वो हमको जब मालिक छोड़ने आया गेट तक, तो पपी भी आया गेट तक। जब वो गेट तक आया तो मेन रोड पे आ गया, तो मेन रोड पे आने के बाद क्या हुआ, चार पांच बड़े बड़े कुत्ते आ गए और वो भोंकने लगे उसको देख के, क्योंकि ये पालतू कुत्ता है और स्ट्रीट रोड रोड के कुत्ते हैं। तो उसने क्या किया मालूम है, इतना सा पपी था वो, इतने बड़े बड़े कुत्ते थे वो रोड पे जो भोंक रहे थे जोरदार से। तो ये पपी ने क्या किया, अपने मालिक के दो पैर के बीच में आया वो और जोरदार भोंकने लगा उनके ऊपर। हमको भी वही करना है, वो मालूम है कि मैं तो कुछ ताकतवर नहीं हूँ, मैं तो इतना सा हूँ, वो बड़े बड़े ताकतवर कुत्ते हैं, कि मेरा मालिक उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। उसके पैरों के बीच में आके उनका सहारा लेके जब भोंकने लगा तो एकदम बिंदास होकर भोंक रहा है वो, और वो मालिक के पैर के नीचे से हल नहीं हिलने रहा है, और वो कुत्तों की आगे आने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि मालिक बीच में खड़ा है, तो वो भी भोंक रहे हैं लेकिन उसको आगे और आने की हिम्मत नहीं हो रही बड़े बड़े कुत्तों को। तो कहाँ शक्ति कहाँ से आ गई, वो शक्तिशाली नहीं था, शक्तिमान का सहारा लिया उसने, तो भी शक्तिशाली हो गया। हमको भी अपने बल पर ज़्यादा टिमके नहीं मारना चाहिए, हमारा बल तो छोटा ही है हमेशा, लेकिन जब हम सर्वशक्तिमान का सहारा लेते हैं ना, व्हेन वी टेक शेल्टर ऑफ द ऑल पावरफुल पर्सनालिटी ऑफ गॉड, फिर हम भी पावरफुल हो जाते हैं। हमारी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, जिसका सहारा लिया है उसकी स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ हो जाती है। बाइबल में क्या लिखा है, द मीक एंड द हम्बल शैल इनहेरिट माई किंगडम। तो भगवान का भक्त बनने से क्या होता है, जो भी भगवान का है वो आपका हो जाता है। वॉट दे विल इनहेरिट इन द किंगडम, वॉट एवर इज देयर इन द किंगडम विल बी देयर्स। जैसे आप किसी के बेटे हो, आप किसी की बेटी हो, छोटी सी बेटी हो, पापा बोलते हैं क्या, खाले एक कमरे में आपको जाने का और कहीं जाने का नहीं, खाली आपका खिलौना सब इधर रखा है बाकी कहीं जाने का नहीं, घर में कितने कमरे हैं सब आपके ही है, किधर भी जाओ खेलो कूदो, किधर भी कौन से बाथरूम में अच्छा था वहाँ स्नान करो, आज इस ब्लू में जाओ कल पिंक में जाओ, कल एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, पिकअप एनी डब्बा, ईट वॉट एवर यू वॉन्ट। इसका मतलब घर है आपका ना, घर में आप कमाते तो कुछ नहीं, आप छोटी सी बेटी हो, पिताजी कमाते हैं, लेकिन पिताजी का जो भी कुछ है सब आपका है। और मेरी सर्वेंट जो है ना, वो मेरे घर में रहती है, जो मैं खाता हूँ वही खाती है, वो मेरे फ्लैट में रहती है, तो मेरे साथ कार में घूमती है सब जगह पे, उसका कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मेरी सेवा में है, मेरा जो भी कुछ है वो सब शी एंजॉयज एवरीथिंग, घर में क्या क्या बना हुआ है सब वो एंड में उसको मिलता है सब कुछ। तो व्हाट इज द मीनिंग, यू हैव टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड, एज सून एज यू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड ऑल थिंग्स दैट बिलोंग टू गॉड बिकम योर्स। फिर आपको ये गणपति में, नवरात्रि में, चर्च में, माउंट मेरी में जाके लिस्ट लेके खड़ी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एप्लीकेशन लेके खड़े हैं, प्लीज़ सेंक्शन करो इसको, माउंट मेरी सेंक्शन करो, गणपति सेंक्शन करो, कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब कुछ आपका है, आपकी ज़रूरतें सब पूरी हो जाती है, योगक्षेमम वहाम्यहम, एवरीथिंग विल बी फुलफिल्ड, डोंट वरी। तो यही मैसेज है नवरात्रि का। और रही बात गरबे की, आजकल का गरबा मतलब क्या, गर्भा से लेके गर्भवती, ये आज का गरबा का सिंपल फॉर्मूला है, गरबा एंड गर्भधारणा एक साथ चलते रहते हैं, इतना सब गिर गया है सब कुछ, देवी का आनंद के लिए नाचते हैं सब श्री, अभी वो नहीं, अभी पर्पज एक ही है माइंड में, गरबा से रात को 12 बजे गायब होते हैं, घर में 4 बजे पहुंचते हैं, गरबा 12 बजे बंद हो गया लेकिन लड़के लड़कियाँ सुबह 4 बजे घर पर आते हैं, फिर दिसंबर में सब लाइन लगते हैं अबॉर्शन क्लिनिक के अंदर। तो हमको सब विचार करना चाहिए सब, अगर आप लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को नहीं कल्चर दिया तो आपको भी वही देखना पड़ेगा आगे, आपकी लड़कियां भी बैठी रहेंगी अबॉर्शन क्लिनिक के बाहर 600 रुपये के अंदर अबॉर्शन कराने के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा एक्चुअली, वो कॉलेज जाएंगी और शाम को घर पर आएंगी, यू विल नॉट इवन नो बीच में क्या हो गया। इसलिए आप लोगों को ये सब मीनिंग जानना ज़रूरी है, और अपने बच्चों को कल्चर नहीं देंगे तो फिर वो जो वही होगा जो आपके जीवन में आप नहीं चाहते हो। इसलिए नॉलेज जो है ना, संस्कृति कल्चर जो है ना, वो वैक्सीन की तरह है, वो आपके बच्चों को आप देंगे तो बाहर का रोग उनको लगेगा नहीं, बाहर रहेंगे लेकिन जैसे कि मच्छर के एरिया में जाएंगे लेकिन आपको मलेरिया नहीं होगा क्योंकि आपने वैक्सीन लेकर रखा है, एंडेमिक एरिया में आप जाएंगे लेकिन आपको मच्छर काटने पर भी मन ले रहे होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी लस लेके रखी है। वो लस जो है वो नॉलेज और कल्चर है, इसलिए हम लोग इतना बोलते हैं यहाँ पर ऐसे बाल मत छोड़ो, ऐसे पूरे कपड़े पहनो, अच्छी तरह कपड़े पहन के रहो, ज़्यादा औरत आदमी से क्लोज मत आओ, दूर रहो, अपना रिस्पेक्टफुल अंतर रखो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि डेंजर है इसके अंदर, रेड लाइट है इसके अंदर, आप आगे जाओगे तो संकट है उसके अंदर, प्रॉब्लम हो सकता है आपको। इसलिए आपको सेफ रखने के लिए वो इंजेक्शन दे के रखा है, टू कीप यू सेफ एंड प्रोटेक्टेड। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।